ফলও সমস্ত ফলের চূড়ামণি। বিক্রীতম ব্রজ বিদ্যান্ত বিষ্ণু এই শ্লোকেতে এর অবতারণা করা হয়েছে। চকা এর মধ্যে চ আছে, বিক্রীড়তম বধুবধুভি ইদম চ, চ মানে এই রাসলীলা এবং বাল্য লীলা থেকে আরম্ভ করে যত রকমের লীলা আছে সমস্ত লীলা সম্বন্ধে এই বিচার করতে, সমস্ত লীলাওকে সম্বন্ধে মে ইয়ে সমঝনা চাহি, কেবল রাসলীলাই নেই, চ মানে যত লীলা তার আছে সমস্ত লীলা সম্বন্ধে এইটা বুঝতে হবে। এই জন্য চকারের দ্বারা রাস ক্রীড়া সদৃশ অপরাপর যত বাল্য লীলা থেকে দ্বারকা লীলা ইত্যাদিও আছে সমস্ত গুলিকে অন্তর্ভাব্যে মনে করতে হবে। এবং শুধু তাই নয়, কবিবর্ণী জয়দেব কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস এবং পরবর্তীকালে থেকে চৈতন্য চরিতামৃত রূপ গোস্বামী জীব গোস্বামী সনাতন গোস্বামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রভৃতি ইত্যাদি যাহারা বর্ণন করেছে, নরোত্তম ঠাকুর শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নিজের পদেতে যে তার অভিব্যক্তি করেছেন, সেই সমস্ত অন্যান্য লীলাকে বুঝতে হবে, অসব লীলাও সমঝনা হোগা। ইয়াপর বিষ্ণু বিক্রীড়িতম ব্রজবুদ্ধি দঞ্চ বিষ্ণু, বিষ্ণু মানে সবসময় রাখবে ওটাও খেয়াল যে ইনি বিষ্ণু, কেন তার সঙ্গে মধ্যে ভয়োদ্ভয় কোটি কোটি গোপীগণ করোড়ো করোড়ো গোপী আর বীচ মে এক এক দো দো গোপীকে বীচ মে এক এক কৃষ্ণ, সাধারণ কে লিয়ে সম্ভব নেই, মধুর লীলা কে কারণ উসকো ক্ষিপ্র গতি কৃষ্ণ কা বতলায়া, নিত্য কা এক কৌশল বিশেষ। আর যে আশ্চর্য পারায়ণ যে ভক্ত হ্যাঁ উনকে লিয়ে কাহা যে উনহনে উতনে রূপ প্রকাশ কর দিয়ে ওই রকম হ্যাঁ রূপ, তুমি কোটি কোটি গোপীর মধ্যে কোটি কোটি কৃষ্ণ হয়ে এক গোপী এক কৃষ্ণ, দুই গোপীর মধ্যে একটি কৃষ্ণ, এইরকম ভাবে তিনি প্রকাশ করতেন। এই জন্য তিনি বিষ্ণু, নু মানে নিশ্চিত, নু মানে ইহা অনুশব্দ কানু অপ হটা দিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নু শব্দ নিশ্চিত রূপ মে শ্রবণ জরুর করা চাই নিশ্চিত, ইসলিয়ে কাহা নু অনু নিরন্তর, আর অনু মানে নিরন্তর, নু মানে নিশ্চিত রূপ মে নিরন্তর অনন্তর, অর্থাৎ পহলে শ্রবণ করকে নিরন্তর তব ফির বর্ণন যদি করো, পহলে গুরুমুখে তো শ্রবণ করবে, সুখদেব নিকটেতে সুত গোস্বামী শ্রবণ করেন আর তারপরে জীবন, এরকম গুরুমুখেতে শ্রবণ করে তারপরে তার অনুকীর্তন নিরন্তর যদি কেউ কীর্তন করে তাহলে এটা হল অনুশব্দের, কিংবা স্বকবিতায় কাব্যরূপে বর্ণন ইত্যাদি যদি কেউ করে যেরকম গীত গোবিন্দ ইত্যাদি মধ্যে সেটি বর্ণন করেছে। পরাম পরাম বলছেন ভক্তি পরাম ভগবতী প্রতিলব্ধ কামম, এখানেতে পরাম বলছেন মানে প্রেম লক্ষণা ভক্তি তাহার হবে, প্রেম লক্ষণা ভক্তি প্রতিলব্ধ, প্রতিলব্ধ মানে কি এর মধ্যে ত্বা প্রত্যয় করে দিয়ে তারপরে এটা লব্ধা লব্ধ বলা হচ্ছে প্রতিলব্ধ, এর তাৎপর্য কি অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে সকলের কাম থাকবে বাধ্যভাবে বদ্ধ জীব মাত্র কাম থাকবে, এই কামরোগ থাকা সত্ত্বেও কামরোগ থাকুক শ্রদ্ধান্বিত শ্রদ্ধাপূর্বক অন্বিত হয়ে অর্থাৎ শ্রদ্ধাকে যোগ করে অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক যদি শ্রদ্ধা কোনটি শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে এই তো হচ্ছে প্রথমে ভক্তি লতার দিক, এই সময় অনর্থ পুরা থাকে হয়তো অপরাধও থাকতে পারে সেই সময়তে, সবই থাকবে, কিন্তু ওই থাকা সত্ত্বেও, কাম আদি রোগ থাকা সত্ত্বেও প্রথমে প্রেম হৃদয়তে প্রবেশ করিয়া থাকে এই শ্রমণ করলে। আর প্রেম যত পরিমাণেতে প্রবেশ করবে, ভক্তি যত পরিমাণে প্রবেশ করবে, তত পরিমাণেতে অনর্থ কাম রোগ হৃদরোগ সব ধীরে ধীরে চলে যাবে। প্রথমে আমার সমস্ত কাম দূর করব, পহলে কাম দূর করেঙ্গে আর অনর্থ দূর করেঙ্গে আর অপরাধ দূর করেঙ্গে, ইসকে বাদ মে হম ভক্তি করেঙ্গে, হম শুনেঙ্গে ভক্তি করেঙ্গে, আমি ভক্তি করব পরে। এটি কদাপি কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তরে এটা সম্ভবপর নহে। ভক্তি কোথা থেকে আরম্ভ করো? ভক্তি করবার অধিকারী কে? ভক্তির অধিকারী প্রত্যেক জীব, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদা। এমন কোন জীব নাই, জীব জন্তু কীট পতঙ্গ ঘাস পেড় পৌধা নাই যার ভক্তিতে অধিকার নাই, সকলেরই ভক্তি করে। নর মাত্রে কি নর মাত্রে মানে জীব মাত্রের অধিকার, জীবের স্বরূপ হে কৃষ্ণ নিত্য কৃষ্ণ, অতএব তাহার অধিকার আছে। তার মধ্যে যত রকমের কাম আর এইসব বদ্ধ জীবের থাকবে, কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদির বহিমু। এই ভক্তি কিসে হবে? এই জন্য ভগবানের অবতার, তাহার শক্তিগণের আচার্য রূপে অবতার, ভাগবতের এই জন্য অবতার, যত ভক্তি গ্রন্থের এই জন্য অবতার, যত ভক্তের এই চেষ্টা যে বিমুখ জীবগণকে ভগবানের পাপ কিরকম আসবে? তারা তো সব বদ্ধ, দেহাত্মাভিমানী, হৃদরোগও আছে, কামরোগও আছে, অনর্থও আছে, কিরকম নিয়ে আসা যাবে? তাহলে প্রথমে এই দূর করা যাও, কোটি কোটি জঙ্গলে জায়গাতে তখনও দূর হবে না, তাহলে ভক্তি বঞ্চিত থেকে হবে না, কিসে হবে? এই হরি কথা শুনলেই হবে। তবে হ্যাঁ এটা ঠিক, প্রথমে ওইগুলি শুনবে না, প্রথমে সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিপ্রিয় জ্ঞান, তারপরে প্রেম প্রয়োজন, এই সবগুলিতে ক্রমে ক্রমে সবগুলি। কিন্তু এর মধ্যে যদি লোভময় ভক্তি যাহা তার হয়ে গেল, তার উপরে এই বেদের অঙ্কুশ থাকবে না। কেন হয়ে যাবে? এই কেন কোনো কোনো কথাই নেই যে কেন হবে। হয়েছে লোভ হয়েছে একটা জিনিসের, এর লোভের কোন কারণে ভগবত ইচ্ছাই বলো অথবা বৈষ্ণবগণের সঙ্গ বলো অথবা যে কপান, কোটি জন্ম সুকৃতির না লভ্যতে, কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি এবং সাধনের দ্বারা যা হবে না, হয়তো ভগবত কৃপাতে, তার ভক্ত কৃপাতে, আকস্মিক ভাবেতে, কোন সৌভাগ্যেতে এটা হতে পারে। নাই তো জীবের মঙ্গল কিসে হবে? জীব কা কল্যাণ কেসে হোগা? ইসিকে লিয়ে কহতে হ্যাঁ কি হৃদয়তে কাম আদি রোগ থাকবে, এটা সুনিশ্চিত। প্রথমে প্রেম হৃদয়তে প্রবেশ করিয়া থাকে, প্রথমে প্রেম অর্থাৎ এখানে ভক্তি, ওই শ্রদ্ধা ইত্যাদি রূপেতে প্রবেশ করছে। ওই শ্রদ্ধা যত পরিমাণেতে অনর্থ দূর হয়ে যে ক্রমে ক্রমেতে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব হচ্ছে, কত পরিমাণে অনর্থ হৃদরোগ হৃদকাম সবগুলি ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে, বুঝতে পারা যায় না। অথচ অলক্ষিত ভাবেতে এই সবগুলি দূর হয়ে যাচ্ছে ওই হরিকথার সং প্রভাবেতে। প্রেম ওই ভাবেতে, প্রেম মানে এখানে শ্রদ্ধা থেকে আরম্ভ করে, ওই সব ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে, তত পরিমাণে ওরা দূর হতে লাগলো। সেই প্রেম স্বীয় প্রভাবে তাহার হৃদয়ের কাম আদি রোগ সমস্তকে দূর করে দিবে নিশ্চিত রূপেতে। ওই মণি মন্ত্র আর ঔষধি প্রভাব যেরকম, না জানলেও হয়, বিনা জানে হুয়ে হতা হয় বয়সে ইসকা ভি হো যাতা হয়। অর্থাৎ রাসলীলা কথার সমন কীর্তনে এ তাদৃশ প্রভাব, এমন তাহার প্রভাব যে তাহার ফলে শ্রদ্ধা মানুষাদকের হৃদয়ে কাম নাশ এবং প্রেম লাভ যুগপৎ সংঘটিত হয়, কাম দূর হয়ে যাবে, অনর্থ দূর হবে আর প্রেম লাভ হবে। যদিও দুটা যুগপৎ সংঘটিত হয়, যুগৎ মানে একসঙ্গে তো ওটা প্রেম হচ্ছে মানে ভক্তি হচ্ছে আর ওই পরিমাণে তাহার এইগুলি ধ্বংস হচ্ছে, তথাপিও বলছেন আবার
तथापि प्रेमे प्रभाव प्रथम ही प्रकाश हो था प्रथम प्रेम था भीतर ते जावे भक्ति जावे हृदय से तहा बोला हो जाने बोल ए लीला कथा श्रवण कीर्तन फले प्रथम ही भगवत चरणे प्रेम लाभ परा प्रेम लक्षण प्राप्ति थी क्या प्रत्यय न हृदय रोग वक्त्या प्रथम एव प्रेम न प्रवेश पहले प्रेम प्रवेश कर दो तात्पर्य तत्प्रभाव न कोई ही रोग नाश कोई पैमाने से होते थकते इति प्रेमा अयम ज्ञान योग एव न दुर्बल ये प्रेम ज्ञान और योग उपवास इत्यादि मतुन एटा दुर्बल न है ज्ञान का दुर्बल योग दुर्बल तपस्या दुर्बल किंतु भक्ति देवी दुर्बल आन प्रेम का दुर्बल न है सर्वसमर्थ जे रकम भगवान सर्वसमर्थ ये प्रेम का भक्ति का पराभक्ति वो से रकम हल्के प्रभावशाली उन्हीं पर तंत्र न है তাই এখানে বলছেন এবং তাহার পর চিত্ত কাম বাসনা মল হইতে মুক্ত হয় এই প্রেম যত পরিমাণে তে ভক্তিরূপে তে প্রবেশ করতে লাগলো সাধকের হৃদয়েতে তত পরিমাণে তে কাম বাসনা ইত্যাদি যত রকমের হৃদয়ের মল হৃদয় অনর্থ অপরাধ সব দূর হৃদয় ধীরে ধীরে নির্মল হতে থাকে হৃদয় ধীরে 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 নির্মল बिना भक्ति के प्रवेश के कभी भी कोटि कोटि जन्म अनंत काल तक चित्त कभी भी निर्मल नहीं हो सकता यदि होगा भी तो पहले ही प्रहलाद चरित्र में या कौन सा चरित्र में अजामिल चरित्र में उन्होंने बतलाया है बांस के झड़ में आग लगा दो और वो जल गया और फिर वर्षा हुई कोमल कोमल पकोले बांस के उठने लगे और वो 10 गुना भर गया ऊपर से दुर्वाघाट को काट दो हटा दो छीन दो उसको मैंने होता के दूर करे दो वर्षा होलो देखो जैसे कुछ ही नहीं अब वर्षा होलो आर कोटि कोटि भावे थे उठा गर्म काले थे सब तीन लता गुल्म सब पुए जाए आप वर्षा होले अब खेती गजिए उठे कोठा थी के गजिए उठलो ओर रकम होते योग तपस्या ज्ञान द्वारा अनर्थ पूरी আপাতত কিছু দূর হলেও আবার সময় অনুসারে আবার গজিয়ে উঠবে আবার হয়ে যায়গা কিন্তু ভক্তিকে দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে উসকে মূল কো ধ্বংস করকে আর অনর্থ কো দূর করকে ভক্তি দেবী আপনে প্রভাব সে ধীরে ধীরে উসকে হৃদয় মে প্রবেশ করতি হয় প্রবেশ করেন আর এইগুলিকে সমূলে ধ্বংস করেন আর কোনো দিন উঠবে না ওই কারণ কেন না জ্ঞান যোগ আদি দুর্বল ভক্তি হচ্ছেন পরম স্বতন্ত্র ভক্তির উপরে কারো যোগ কর্মে মতন কারো অঙ্কুশ নাই ভগবানই হচ্ছেন ভক্তিস্বরূপ শ্রীমতীর লাদি সত্যি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধিকা আর ওই তার মধ্যে মিশে গিয়েছে সম্বীর এই দুটা মিলে তাহার যে সার অংশ সেই হচ্ছে প্রেম প্রেম সের ভাব প্রেম সার ভাব প্রেমের সার ভাব তাহার আবার সার হচ্ছে কি মহাভাব মহাভাব স্বরূপনা স্বরূপিনী শ্রী রাধা তিনি হচ্ছেন ভক্তি স্বরূপিনী পরাভক্তি স্বরূপিনী অত তাহার উপরে কাহার অঙ্কুশ নাই এমনকি কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রেমা ভক্তির বশীভূত শ্রীমতী রাধিকা যেরকম বশীভূত এই প্রেমা ভক্তির বশীভূত কৃষ্ণ যেরকম হয় প্রেম না চাবে কৃষ্ণ সেই রকম হবে না এমন সেটি স্বতন্ত্র ভক্তি দেবী ইহা দ্বারা হৃদয় কাম রোগ হইতে ভগবত বিষয়ক যে কাম তাহার একটা ব্যবচ্ছেদ হল মানে একটা পৃথক হৃদয় রোগ একটি পৃথক এটা বদ্ধ জীবে আর যাহারা মুক্ত জীব তার মধ্যে শুদ্ধ প্রেম থাকতে পারে এই জন্য তাহার রাগাত্মিক ভক্ত ব্রজের সব রোগ আর আমরা হচ্ছি আমাদের গুরুবর্গ হচ্ছেন রাগানুগা ভিন্নঙ্গ প্রভৃতি যে সাধক ছিলেন অথবা বাহ্য আচরণ দ্বারা যে রঘুনাথ ইত্যাদি ছিলেন ওরা রাগানুগা ভক্তির আচরণ করবার মতন দেখাচ্ছেন, কিন্তু তারা বলছেন রাগাত্মিক জন, তার উপরে তো এই বিধি মর্যাদা ইত্যাদি কোন অঙ্কুশ নাই, এমন তাহাদের ভক্তি। এই জন্য কাম আর প্রেম প্রথম একবারে বিপর্যয় রূপে, কোথায় কাম হচ্ছে, কাম হচ্ছে এই জগতে মল, আর প্রেম হচ্ছে কোথায় পরম নির্মল সোনা সদৃশ, আরই হচ্ছে লৌহ জঙ্গ মতন। এখানে আরেকটি বলছেন যেহেতু ভগবত বিষয়ে কাম, গোপীগণের কাম কামই হচ্ছে প্রেম, আমাদের সব কিছু হচ্ছে এখন কাম, প্রেমের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণ প্রীতি, আর কামের উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র ইন্দ্রিয় প্রীতি। এই যে দুটোর মধ্যে তফাত আছে, ধীর অচিরেণ ধীর, ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এই কথাকে যদি শ্রমণ করে কালান্তরে এই ভক্তি তার হৃদয়ে প্রবেশ করে দিয়ে সমস্ত অনর্থ কাম সবকে দূর করে। এখন ধীর মানে কি, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ধীর মানে পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে কি পণ্ডা বুদ্ধি বেদ উজ্জ্বলা বুদ্ধি যাহার আছে তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত, এই পণ্ডিত শ্রদ্ধান্বিত শ্রদ্ধাযুক্ত অর্থাৎ শাস্ত্র বিশ্বাস। শ্রদ্ধা বলে কাকে বলেছেন, শ্রদ্ধা শব্দে কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্বক্ষণ, কৃষ্ণের ভক্তি করলে আমার সব কিছু জীবনে যা করা আছে সব কিছু হয়ে যাবে, কৃষ্ণ কা ভক্তি করলে সে হমারে জীবন মে যো কুছ করনা হ্যায় ও সব কুছ করনা হো গিয়া, শাস্ত্র কে ইস বচন পর জো বিশ্বাস করতা হ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস হ্যায় ইসি কা নাম, উস সময় অনর্থ রহেগা, হৃদরোগ ভি রহেগা, কাম ভি রহেগা, অনর্থ ভি রহেগা, হো সকতা অপরাধ ভি, কিন্তু এসা জব হো যায়গা ইয়ে এসা কেসে হোগা সাধু কে আপনে আপ নাই হোগা, কিসি প্রকার সে ভি জান করকে অনজান করকে ভক্তি তো ভগবত সঙ্গে ন পরি যায়, ভগবত সঙ্গে সে যদি হয় ভগবান কে ভক্তন কে সাথ মে হোগা তো ইয়ে ভক্তি ऐसे और भक्तों का संग कैसे होगा, जन्म जन्म की सुकृति यदि हो, भगवत उन्मुखी यदि कोई कार्य क्रियाकलाप करे तो उसकी वैसे सुकृति होगी, ऐसे सुकृति कोटि जन्म में एकत्रित होने पर जब वह पुष्ट होगी, ऐसे सुकृति के बल से ऐसे संतों का दर्शन होगा, ऐसे नहीं जो हमने प्रयास किया और संतों का दर्शन मिल जाए और हरि कथा सुनने को मिल जाए, कभी हो नहीं, अपने विचार से नहीं होगा। ज्ञाता एक चूहा ठाकुर जी के घर में प्रदीप रखा था, उसका तेल पीने के लिए गया, पहले खबर जन्न गेलो ठाकुर जी का प्रदीप जल रहा था और वो जल करके एकदम भीतर में चला गया, तब बुझने वाला था, टिम टिम करके जल रहा था, चूहा तेल के लोभ से गया, ज्यों ही तेल में मुख दिया उसकी बत्ती उसके नोकीले दांत से लग गई और वो खिसकी आगे आगे एक बढ़ो, तखन मन और मुख पूरते लागो, अब कोनो रकम छाड़िए दिए वही जो बत्ती उसक गई, बत्ती का एक तो ऊपर ही चले आसलो आब आप प्रदीप का फल भाव जो ये उसकी सुकृति हो गई,
दीप देने का
अज्ञान में
दीपदान का
सुख, यह दीपदान का उसको फल हो गया ठाकुर जी का और उसकी सुख, ऐसे ऐसे कोटि जन्मों की सुकृति मिलेगी तब साधु संग होगा और तब वो साधु संग करने के लिए उसमें श्रद्धा आएगी, ऐसे नहीं होता है, तो ऐसे जिसकी श्रद्धा उसमें हुई है ऐसा ही श्रद्धा से वो सुनने का अधिकारी होगा, तो उसके लिए कहते हैं अतएव श्रद्धान्वित अथवा शास्त्र विश्वास, साधु वाक्य गुरु वाक्य आज शास्त्र वाक्य चित्ते ते करिया आर ना करी है मने, गुरु जी क्या कह रहे हैं शास्त्र क्या कह रहे हैं और साधु लोग वैष्णव लोग क्या कह रहे हैं, तीनों को मिला करके देखो। यदि शास्त्र और वैष्णव लोग एक बात कहते हैं, गुरु विरोधी कोई दूसरा काम कर रहा है, तो इनकी बात माननी होगी। साधु और यदि गुरु एक कह रहे हैं और वैष्णव गुरु का अनुमोदन और शास्त्र एक प्रकार कह रहा है, तो शास्त्र के बात में समझना है कि इसमें अंदर में कोई और चीज है, इसका अर्थ हम नहीं समझते हैं, तो वैष्णव के पास में जाओ और समझाते एमनी भाव से पूछते पाए कोई रकम है, सुनते हो विश्वास करते हैं। ये रकम होते साधु शास्त्र और गुरु तीनों की वचनों को एक तान मिला करके चलो तब भक्ति करो। तीनों का बात एक ही होता है, कभी सदगुरु होगा, सदवैष्णव होगा, सत्शास्त्र होगा, तीनों में कभी भी डिफरेंस नहीं हो सकता। कौनो कौनो दिन मतभेद होते पड़े ना, मतभेद यदि देखा जाते वैष्णव रहता है सामंजस्य कर जा भागवत पढ़ो वैष्णव वैष्णव के पास में जा करके भागवत पढ़ो, वो तुमको अच्छी तरह से सब अच्छी तरह से समझ भालो कर पूछे दीते। एखन एक विशेष कथा एखने बोल जरा शास्त्रे कथाते अविश्वासी तहरा की होते नास्तिक अपराध। यही जो कथा बोल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल यदि कौन व्यक्ति शास्त्रीय कथा वैष्णवदेर कथा गुरु कथा विशेष करे शास्त्रीय कथा यदि ना सुने तार ऊपर विश्वास ना थाके ताले से की नास्ती ने? शास्त्र विश्वासी ना अविश्वासी ना नाम अपराधी ना शास्त्रीय कथा जरा माने ना सुने ना तारा की होच्छे नाम अपराधी। प्रेमात अपि न अंगी करोती भाव अर्थात वही क्या कहने बोल देखो वही धीर शब्द अर्थ कर धीर माने के पंडित पंडित के शास्त्र वाक्य से विश्वास हृदरो काम सत्वु प्रेम लाभ होते पारे ना एरकम जे नास्तिक कथा आछे मूर्खता आछे एथी के रहित जिनी तिनी होचेन धीर अथवा पंडित। की हलो देखो फिर से पंडित का के बोलबे धीर के धीर माने पंडित पंडित के श्रद्धांजलि अर्थात शास्त्र विश्वास शास्त्र अविश्वासी माने की शास्त्र बोलचेन ये काम सत्य उ अनर्थ सत्य उ प्रेम लाभ होते पारे ना एरकम जे नास्तिक कथा बोले इटा नास्तिक कथा काम आछे अथच भक्ति कथा पारा जाबे ना एटा होच्छे शास्त्रे अविश्वासी नास्तिकेरा एवं मूर्ख हृदरो काम सत्य काम आछे किंतु हरि कथा सुनले भगवत भक्ति करले एरा भगवत भक्ति करवार अधिकारी ना एदेर कोनो दिन प्रेम लाभ होबे ना এইরকম যারা কথা বলে তারা হচ্ছে সম্পূর্ণ নাস্তিক এবং মূর্খ। এরূপ নাস্তিক লক্ষণ মূর্খতা থেকে যে রহিত তারাই হচ্ছে ধীর অথবা পণ্ডিত। ভক্তি এমন জিনিস একটি যে যে রকম অবস্থা থাকে অপিতে সুদূরাচার ও ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুর এব সম্বন্ধ তাকে সাধু না মহা একটি কামী এই বিল্লমঙ্গল ও থেকে কে কামি হবে কিরকম ভগবত ভক্তি তারা লাভ। আমরা পূর্বে কখ গখ কোন তত্ত্বের জানতাম কিন্তু যত পরিমাণে গুরু বাক্য ইত্যাদি শাস্ত্র ইত্যাদি শ্রবণ করে ক্রমে ক্রমে একটু অবধারণা শক্তি আসে। এইটি যদি সময় না করে যদি দেখি যেছে আমার অধিকার কোনদিন এটা হবে না, আমি চিরকাল জেনে একই ক্লাসেতে বসব, আমি কোনদিন উপরে যেতে পারবো না, এই যদি ধারণা যদি হয়ে যায় জন্ম জন্মান্তরেতে আমরা শুনবো না, অধিকারও বাড়বে না। অতএব আমরা যে ক্লাসেতে আছি ওই অপরাধী আর ওই অযোগ্য অনাধিকারী থেকে যাব, উপরে উঠব কিরকম? এই জন্য আমরা প্রয়াস করতে হবে যে সে আমরা যে যে অধিকার আছে সেই অধিকার অনুসারে চলতে চলতে একটি পায়ে যদি স্থির হয়ে যায় তো দ্বিতীয় পায়ে উঠে উত্তম অধিকারীতে কোন সময় যাবে, এইরকম অধিকার বাড়ে। অন্যথা কিরকম উপরে বাড়বে, কাইসে উপরে যায়গা? এই জন্য বলছেন যে ধীর কাকে বলে, পণ্ডিতকে, পণ্ডিত কাকে বলে, যিনি শাস্ত্র বিশ্বাসী। শাস্ত্র বিশ্বাসী মানে কি? এমন একটি বুদ্ধি যে হৃদরোগ অর্থাৎ কাম অনর্থ থাকলে প্রেম লাভ হবে না ভাই কোনদিন, এইরকম হয় নাস্তিক পূর্ণ লক্ষণ, মূর্খতা যুক্ত। এ থেকে রহিত যখন হয়ে যে শাস্ত্র শুনে নিশ্চিত হব, গুরু সেবা বৈষ্ণব সেবা করলে আর ভগবত কথা শুনলে আমার নিশ্চিত তোমার মঙ্গল হবে, এইরকম দৃঢ় বিশ্বাস যুক্ত, এর নাম হচ্ছে শ্রদ্ধা। এইরকম শ্রদ্ধা যাহাদের এসে গেছে তারা হরি কথা শুনে একবারে মোটামুটি। অতএব শ্রদ্ধান্বিত অথবা শাস্ত্র বিশ্বাসীকে এখানে ধীর বলেছেন। শাস্ত্র অবিশ্বাসী, শাস্ত্রের প্রতি যে অবিশ্বাস, এই কথা যারা মানে না, নামাপরাধী ব্যক্তির প্রেম লাভ কোনদিন হবে না। এই শাস্ত্র বিশ্বাসী রাস আদি লীলার কথা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাদের শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরাই এই লীলা কথা শ্রবণ ফলে হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব প্রথমে প্রকাশ পাইয়া সকল কাম একেবারে সমূলে রোগকে নষ্ট করে দেয়। যত পরিমাণে তে শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস সাক্ষাৎ মুনিবেদনম সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ মথুরা বা শ্রীমুক্তির শ্রদ্ধায় শ্রবণ সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঙ্গ কৃষ্ণ প্রেম জন্মায়। এই কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় অর্থাৎ অনর্থ গুলিকে দূরভূত করে দিয়ে নিশ্চিত রূপেতে তার শক্তি প্রভাবেতে এই সব গুলিকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে প্রেমকে এখানে, এখানে প্রেম মানে ওই তৎক্ষণাৎ যে বলছেন না, তৎক্ষণাৎ মানে প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপরে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি, তারপরে ভাব, এইরকম। অতএব হরি কথা শ্রবণে যাহাদের এই সবগুলি না, তাদের শুনতে রুচিই হবে না, মোটেই রুচি হবে না, হয়তো তারা তখন ঘুমাবে অথবা ওখান থেকে চলে যাবে, এমনই হরি কথা। যদি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যদি শুনে ধীরে ধীরে তার অনর্থ দূর হয়ে যাবে, এছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। এই জন্য আমরা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যুগ গোস্বামীর ঠিক এইরকম পরলোল কথা উনিও বলছেন, এই সব কথা একটাই বললাম। এখন আমরা আমরা গিয়েছিলাম যেখানে নাথেতে গিয়েছিলাম, হম লোগো নে কাহা থা ওহাঁ পর তো বাংলা মে সব লোগো নে বতলা, ইসলিয়ে হিন্দি মে হি ইসকো বতলা করকে সংক্ষেপ মে বতলাতা হুঁ। আপ লোগ সবাই লোগ হিন্দি জানতে হোগে থোড়া থোড়া। গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু পাশে, যমেশ্বর প্রভু তারে করাইলা আবাসে। গদাধর পণ্ডিত পিছে সে আয়ে, পালে আয়ে থে চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ, আর কই মুকুন্দ, মুকুন্দ দামোদর, ইয়ে পাঁচ আদমি আয়ে। जब गंडभांगा नदी के किनारे जब वो आए तो वहां पर उनका दंड तीन भाग में खंडित करके और नदी में फेंक दिया। महाप्रभु जी ने पीछे से जब उनको होश आया देह का, प्रेम में भी घोर थे, उस समय स्मरण नहीं आया। जब स्मरण आया तो उन्होंने कहा 18 नाला के पास में या उसके पहले थोड़े, उन्होंने कहा हमारा दंड कहां है, दंड तो हमारा दे दो। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा जैसे दंड तो टूट गया है, टूट गया हमने नदी में फेंक दी, कहा जैसे हमारा वही एक प्राण था और एक सहारा था, उस दंड को भी तुमने तोड़ा, कैसे तोड़ा, कैसे टूट गया,
তো যে দিলে সেই ভাঙল,
দিলা যেই ভাঙল,
যে দণ্ড দিয়া থা ওই তোড় দিয়া, হম ইসমে ক্যা কর। আরে ঠিক ঠিক বতলাও না যে কেসে টুটা। তো আপ প্রেম মে বিভোর রহতে হ্যাঁ, আপকো পতা নেই, হরি বোল কর রহে থে, নাচ রহে থে, মে আপকো পকড় রহা থা, ইতনে মে ও দণ্ড ভি আমারে সাথ মে থা, তো আপ গির গয়ে তো মে ভি গির গয়া, দোনো মিল করকে দণ্ড পর গির পড়ে, আর ও দণ্ড ভার নেই সহ সকা, ও তিন খণ্ড মে ও টুট গয়া। আচ্ছা হম তুমারে সাথ মে আব নেহি চলেঙ্গে, হমারা ওই একমাত্র দণ্ড হি রক্ষক থা, আর উসকো আপনে তোড় করকে ফেঁক দিয়া, মে আপসো আপ হামারে গুরুজন হ্যায় আপসে কায় কহুঁ, কিন্তু আব তুম লোগোকে সাথ মে হম নেহি যায়েঙ্গে, ইয়া তো তুম লোগ যাও ইয়া তো মে যাও। তো উন লোগো নে নির্ণয় করকে বতলায়া যে পহলে আপ হি যাইয়ে। তো ও ওহাঁ সে মহাপ্রভুজি ভগবান নাম কীর্তন করতে হুয়ে প্রেম মে আবিষ্ট হোকর কে ফির ও আয়ে, পিছে সে ও লোক আয়ে। ইসমে গদাধর জি নহিঁ থে, গদাধর জি কব আয়ে, মহাপ্রভু জি জব ইহাঁ পর পৌঁছ গয়ে তো উনসে রহা নেই গয়া, নবদ্বীপ মে উনকে সহপাঠী থে, এক সাথ মে পড়তে থে, কিন্তু ইয়ে কুছ দক্ষিণ স্বভাব কে থে, ये बाम्य स्वभाव के नहीं थे, जैसे जगदानंद पंडित थे। जगदानंद प्रभु तो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित थे ही, क्योंकि वही जग वो सत्यभामा थी, किंतु महाप्रभु जी ने अतत कृष्ण ने राधा जी का भाव चोरी कर लिया था, अतत चोरी क्या किया था, वही बाम्य भाव चोरी किया था, इसलिए वो रह गया था थोड़ा सा जो वो दक्षिण भाव इनके पास में था गदाधर पंडित के रूप, इसलिए उनका भाव जो चोरी कर लिया था वो भाव वो तो महाप्रभु के पास में रह गया, और इनका चोरी किए के बाद में जो रह गया बाकी वो दाक्षिण्य भाव रुक्मिणी वाला जो घृत स्नेह वाला जो प्रणय है वो रह गया था वो गदाधर जी के पास, इसलिए ये सब समय दाक्षिण्य भाव में रह। इसीलिए तो कहा, क्योंकि महाप्रभु जी ने चोरी कर लिया है,
महाप्रभु जी ने चोरी किया है तो हाँ,
इसलिए कि लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कहा असल में उनका ही भाव इनमें है कि जगदानंद रुक्मिणी इत्यादि वही वो भाव रहित जो बाकी रह गया दक्षिण वाला भाव वही उनमें वो प्रकाशित करे, इसलिए ऐसा समझना चाहिए उनका भाव लेकर।
आप और मध्य कुछ ऐश्वर्य अंश लिप्त था के तखन रुक्मिणी भाव में गोपी गंडर मध्य बाम्य भाव प्रधान दक्षिण भाव है कुछ एकता था के अतार मध्य ऐश्वर्य नेशु था के रुक्मिणी वो कहने जे चंद्रावली प्रभृति मध्य जे देखा जाते तो ये भाव তার মধ্যে ঐশ্বর্য নাই, কিন্তু রুক্মিণী ইত্যাদি মে মধ্যে আজকে ঐশ্বর্য ভাব, এই জন্য ওদের সঙ্গে বহু পার্থক্য। এখন চৈতন্য মহাপ্রভুপে যখন কৃষ্ণ এসেছেন তখন রাধিকার যে ওই ভাব মহাভাব মদন ভাব ইত্যাদি চোরি করে নিয়েছে, আমার যদি কোন হীরা মুক্তা থাকে আর তুমি চোরি করে লো তাহলে মুক্তা থাকবে কি আমার কাছে, মুক্তা তো তুমি চোরি করেনি, ওইরকম কৃষ্ণ চোরি করে নিয়েছেন কি ওই বাম্য ভাব যুক্ত যে কুটির প্রেমের যে ভাব ওই ভাবটা চোরি করে নিয়েছে, এই জন্য বাকি থাকলো কি ওই ঐশ্বর্য অংশেতে মিশ্রিত ওই দাক্ষিণ্য ভাব যা রুক্মিণী সে থাকে, এই জন্য মহাপ্রভু তাহাকে কোন কোন সময়তে বলছেন যে পরীক্ষা করেছেন কোন সময়তে, মহাপ্রভু বলেন যে শপথ দিচ্ছি তোমাকে মাথার আমার আমার মাথা খাও যদি তুমি যাও এখান থেকে কটক থেকে আগে, তুমি এখানে থাকো, তুমি এখানে থেকে গোপীনাথের সেবা করো আর ক্ষেত্র সন্ন্যাস রক্ষা করো, যদি আমার কথা প্রতিবাদ করে তা আমার মাথা খাও, এখন মাথার শপথ আমার মস্তকের শপথ তুমি যাও, ওই শুনেই বাস মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। সার্বম ভট্টাচার্যকে বললেন যে তুমি একে
রায়ানন্দ আগে পর্যন্ত এসেছে আরো পরে, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য তিনি তো একটু ঐশ্বর্য ভাবযুক্ত, এই জন্য তাহার ধৈর্য ছিল, ইনাকে নানা প্রকারে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ইনি দুঃখিত হলে তাকে বুঝাইলেন সান্ত্বনা দিবে। সান্ত্বনা দিবে কে? যাহার তত দুঃখ নাই সে সান্ত্বনা দিবে, যাহার একটু ধৈর্য আছে সে। এই জন্য তিনি তাকে ধৈর্য ইত্যাদি দিয়ে কোন রকম ভাবে এইখানে যে মহাপ্রভুর আদেশ পালন করলেন, আর মহাপ্রভু যা যা বলেছেন, মহাপ্রভু যে তোমাকে অনেক চালাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু চললে না, অর্থাৎ তুমি আমার কথা উল্লঙ্ঘন করলে, এই জন্য আমি তোমাকে স্নেহ করি, এই জন্য তুমি চলে গেলে। এই হচ্ছে দাক্ষিণ্য ভাব। যদি কৃষ্ণের কোন কথা গোপীগণের ভালো না লাগে তথাপি কৃষ্ণ যদি আদেশ করেন কাঁদবে তাহার নিকটে। শ্রীমতী রাধিকার মতন বলবে না যে তুমি এখানে কুঞ্জ ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে যাও, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই। আর কৃষ্ণ হাত জোড়ে ওখানেতে পায়েতে পারবেন, বলি আমার পায়ে ছুঁয়ো, এরকম হয়তো ওরা করতে পারবে। এই ইনার ভাব ছিল রুক্মিণী দেবীর মতন গদাধর সঙ্গে, কারণ ওই তো ভাবটা চুরি করে নিয়েছেন কৃষ্ণ আর মহাপ্রভু হয়েছেন সেই ভাবটা আস্বাদন করে। এই জন্য গদাধর পণ্ডিত ওইখানেতে তিনি ছিলেন, তিনি কোন সময়তে মহাপ্রভু ওখানে প্রায় গেলেন এবং তাহার নিকটে ভাগবত শুনতেন। কেন ভাগবত কেন শুনতেন? অহম বেদমি সুকো ব্যক্তি ব্যাস ব্যক্তি ন ব্যক্তি, এটা কে বলছে? শিব ঠাকুর বলছে। কৃষ্ণের জন্য বলেন যে সে ব্যক্তি বা ন ব্যক্তি, ব্যাস করছেন নারায়ণ, এই জন্য কৃষ্ণ জানেন কি না জানেন এটা হতে পারে, এই জন্য জানতেন না বলেই আস্বাদন করছেন না। রাধায় আপ্রণয় মহিমা গেলেন গোদাবরীতে রায়ারামানন্দের নিকটে শুনলে, তারপরে কিছু আস্বাদন করবার চেষ্টা এ পূর্বে নয়। এই জন্য বলছেন যে মহাপ্রভু ওই ভাগবত শ্রবণ করবার জন্য, ভাগবত মানে গোপীগণের চরিত্রই হচ্ছে ভাগবত। এই জন্য কৃষ্ণের ওখানে কোথাও বন্দনা দেখা যায় না, বন্দে নন্দ ব্রজে ইস্তিনাং পাদ রেণু আসামহ চরণ রেণু যুষামহম শ্যাম। যেখানে স্বরূপ দামোদর থাকতেন এবং পরবর্তী কালে রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাহার নিকটে থাকছেন, এই যে বাড়ি হলুদ রকমের বাড়ি এখন বাড়ি হয়ে গেছে,
ঘর বাড়ি হয়ে গেছে
আর কিছু নাই, তবে এইখানে ওটা ছিল, ওটা ভাঙা চূড়া হয়ে গেছে, তারপরে এরা আবার করেছে, এখন কিছু নাই।
ছোট হলুদ
এইটা সামনে এই ছোট
করতে পারি তদাভিন্ন তাঁরই বিরুদ্ধাচার শ্রী ভক্তি বিজ্ঞান কৃষক গোস্বামী মহারাজের সেবা সুস্থভাবে বজায় রাখতে পারি, তার জন্য তিনি বিশ্বপথে আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করেছেন, আমাদের এই সোসাইটি তিনি প্রেম করে দিয়েছেন, আমাদের সেই সোসাইটির নিয়মকালীন তিনি সেগুলি প্রকাশ করেছেন, আমাদের উপদেশ দিয়ে কিভাবে এই সোসাইটিকে রক্ষা করা হয় সেইসবগুলি তিনি গুরুত্বরি করে আমাদের বক্তার তার অভিন্ন সুরের প্রজ্ঞান কৃষক গোস্বামী সেবা নিযুক্ত করে তিনি আমাদের প্রতিপীড়ক পূজা এবং আমাদের পরম সুরেত রূপে বিবেচিত করেছেন। তিনি কৃপা করুন, তিনি যেখানেই থাকুন আমরা যদি না দেখতে পাই তিনি আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করছেন, এই জন্যই তাঁর শিকার পদ্মে আমরা একটু তাঁর আশীর্বাদ দিই। বাঞ্চাত
নমো মহাবন্দায় কৃষ্ণ শ্রীমৎসদায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে পূজ্যপাদ শ্রী কমারাজি নে বাংলা মে বাংলা ভাষা মে কুছ বতলায়া, মে হিন্দি ভাষা মে থোড়া সা আপ লোগো কে লিয়ে বতলা দেতা হুঁ। উন্হোনে কহা उसी का उत्कृष्ट अर्पण। अभी हम लोग जहां पर आए हैं ये वो हमारे गुरु महाराज जी के परम प्रिय भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगतगुरु जो जगत में आए थे, महाप्रभु जी के आचरित और प्रचारित प्रेम प्रचार करने के लिए विश्व में उनके परिकरों में ये दो यहां पर आने वाले परम पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती महाराज जी और नित्य लीला प्रभु विष्णुपाद कृष्ण भक्ति भारती महाराज जी के उन्हीं लोगों के द्वारा यह मत प्रकाशित हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर दिव्य मंदिर है। मैं समझता हूं कि पूरी में क्या और कमी थी, इतना सुंदर मंदिर होना बहुत कठिन है, दुर्लभ। सामने देख रहे हैं कृष्ण जा रहे हैं आप फूल लेकर के और गोपियां सत्यात्रा वहां पर कर रही है। कहीं महाभारत का चित्र है, कहां समस्त श्रीमद्भागवत से कृष्ण के जन्म लीला से लेकर के और सब चित्र है। माने भागवत यहां पर एकदम संपूर्ण से प्रकटित हुआ है। भागवत वहां ग्रंथ में पढ़ेंगे, यहां पर चित्र में पढ़ेंगे, इतना सुंदर उन्होंने किया। यहीं पर नहीं, कलकत्ता मठ में भी और नौकरी के मठ में भी उन्होंने ऐसे ही सब प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने जाने के बाद में एक रुपया हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम सब ठाकुर जी के श्री विक्रम है और भागवत के रूप में ये सबको लगा देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। आप लोगों ने सुना होगा, हमने एक दिन बतलाया था, ये अपने घर छोड़ करके प्रभुपाद के चरणों में आए। गुरु महाराज जी से उम्र में छोटे थे और एक ही बांग्लादेश के एक ही शायद जिले के रहने वाले थे। जब मठ में आए तो देखा इन्होंने, अरे सभी बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं, कोई भी कम पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। तब उनके हृदय में भावना है कि हम घर में जाकर के और फिर से पढ़ करके आएंगे, इसलिए किसी से नहीं कह करके घर में चले गए थे और वहां पर वकालत पढ़ने लगे। मुख्तारी उस समय था, पढ़ने लगे। गुरु महाराज जी हमारे फिर उनके घर में गए और उनको हरि कथा सुना कर करके और फिर से उन्होंने मठ में लाया। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, शिक्षा के रूप में मानते थे, जैसे हम लोग इस महापुरुष को शिक्षा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे पूज्यपाद महाराज जी ने कहा। हम लोगों के समस्त समिति को गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के बाद में उन्होंने नियम कानून के द्वारा हम लोगों को बांध दिया, कौन प्रेसिडेंट रहेगा, कौन सेक्रेटरी, कौन वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि, इधर उधर से कर करके सब हम लोगों को बांध करके सेवा में नियुक्त कर दिया। उन्हीं की कृपा से आज तक हम लोग निर्विवाद रूप में अपने गुरु पारपत्म की और अपनी गुरु परंपरा और भगवान की अभी तक सेवा और प्रचार कर रहे हैं। ये महापुरुष के प्रति हम लोग सब समय ऋणी रहेंगे। तो ये जब आ गए तो एक दिन कलकत्ते मठ में उल्टा डिंगी में मठ था, तो वहां से ये दोनों आदमी आए कलकत्ते में हावड़ा स्टेशन पर, और वहां पर दोनों बोरियों में एक छोटी सी बोरी माने वो भी एक मन डेढ़ मन उसमें सब्जी भरी हुई, और दूसरी भी करीब करीब डेढ़ मन की सब्जी भरी हुई थी। दोनों दौड़े छोटे की तरफ में नहीं बड़े की तरफ में। पूज्य पाद ये सिद्धांति महाराज उस समय उनका नाम सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी था। पूज्य सिद्ध स्वरूप महाराज प्रभु जी आगे दौड़ करके बड़े को पकड़ा, और गुरु महाराज जी दौड़ करके ये तो बालक उससे जल्दी से दौड़ करके बड़े को पकड़ लिया। गुरु महाराज जी जाकर के फिर बड़े को पकड़ लिया, और छीना झपकी होने जब मैं इसको लूंगा तो मैं लूंगा। वहां से उल्टा डिंगी कभी कभी अढ़ाई तीन मील दूर पैदल वहां पर जाना है, सिर पर बोझा लेकर के, और दोनों परस्पर खिंचातानी करें, हम लेंगे बड़े वाले को तो हम लेंगे भारी वाले। ऐसे गुरु बच्चियों की सेवा होती है, हम लोग उल्टा करते हैं इसके। यही सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी गुरु महाराज जी का मिशन, प्रभुपाद जी का मिशन लेकर के पूज्य पाठ नेमी महाराज जी के साथ में 22 साल जिला में गए वहां पर प्रचार करने के लिए। वहां पर प्रचार होकर के प्रचार करने के समय में पूज्य पाठ नेमी महाराज जी ने इनको कहा सिद्ध स्वरूप कुशहारी कथा बोलो, कुशहारी कथा कहो। तो उठ करके इन्होंने आरंभ किया, और उसमें राम छागल का बड़े जोरों से खंडन किया। राम छागल हरि कथा का जगत का क्या उपकार करेगा, गीतांजलि का माने गीता का एक श्लोक ले करके और नकल करके उसको अंग्रेजी में लिख दिया तो उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। हम लोगों के यहां उनकी पुस्तकें और रसोई घर में स्त्रियां लेकर के पढ़े, विवेकवान पुरुष ये सब उनकी बातों को लेकर के नहीं चलते। इसलिए जब उनको राम छागल कहा, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी राम छागल कहा, जैसे छागल कुछ भी जो कुछ भी होता है खा लेता है और मुख चलाता है और ऐसे करता है, जैसे जगत के जितने घास रूपी अवर्जना उसको चिबाने वाले खाने वाले होगी लोग, वो लोग हरि कथा क्या जानेंगे और जगत का उनसे कोई भी उपकार नहीं होगा। जब इतना था तो सभा के सब लोग एकदम स्तंभित हो गए और एकदम विरोधी हो गए, और कहा हम आप लोगों की बात हम नहीं सुनना चाहते, हम उनके विरोधी हो गए। निमी महाराज जी को भय लग गया, उन्होंने कहा आज सिद्ध स्वरूप हमारा प्रचार सब गड़बड़ कर दिया, प्रभुपाद को टेलीग्राम कर दिया मायापुर में कि हमारे आज प्रचार को बने बनाए सभी लोगों को बड़ा सुंदर प्रचार चल रहा था, सिद्ध स्वरूप ने आकर के क्या गड़बड़ कर दिया, आराम ठाकुर कह दिया उनको। बस सब लोग बिगड़ गए, अब हमारी बात कोई नहीं सुनता है, टेलीग्राम किया प्रभुपाद जी अब हम क्या करें। प्रभुपाद जी ने वहां टेलीग्राम किया, आज सिद्ध स्वरूप हमारा लाख कोटी रुपए का प्रचार किया, बिना ऐसा कहे हुए प्रचार नहीं होता है। आज मैंने सुना कि आज सबसे अच्छा प्रचार सिद्ध स्वरूप ने ये किया, जो सब लोगों को विचार करने के लिए विवश किया, कुछ सुना तो लोगों ने और विरोध तो किया, हमारा यही लाख रुपए का प्रचार हुआ। अभी मैं आता हूं और देखता हूं और देखा क्या मैं सब कोशिश करूंगा। बस प्रभुपाद आकर के उस सभा में ऐलान किया, जिसको विचार करना है वो आओ, कोई भी सामने नहीं आया। इस तरह से गोविंद का प्रचार हुआ, ऐसे नहीं प्रचार हुआ। आज हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए परस्पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इन सबको बंद करके हम सब लोगों को भगवान का प्रचार जैसे इस महापुरुष ने किया, भक्ति रूप सिद्धांति महाराज जी ने किया, ऐसे ही हम लोगों को भी प्रचार करना चाहिए। ये भीख नहीं होने से, साक्षी नहीं होने से ये प्रचार नहीं होता। इसलिए इन लोगों ने उस धारा किसी के साथ में आपस मीमांसा नहीं किया, सहजिया को गले नहीं लगाया, मायावादी को गले से नहीं लगाया। आज तो सभी बराबर हो गया, गंगा भी पट गई और उसमें हम लोग दोनों मिल रहे हैं इस पार उस पार, ऐसा नहीं। ये लोग ऐसे निर्भीक सत्य के प्रचारक थे। इन्होंने केवल ऐसा ही नहीं, केवल भाषण देना, इन्होंने भक्ति महाराज जी गीता का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अनुभाष्य किया, बहुत ही सुंदर हमारे संप्रदाय में वो आदर्श है और इन्होंने उसको फिर से प्रकाशित करके बलदेव विद्याभूषण के काशी का उन्होंने तीन खंडों में उन्होंने प्रकाशित किया। यही नहीं, हमारे गुरु जी की बहुत इच्छा थी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वेदांत का एक संस्करण हमारे गौरीय वैष्णव का होना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण ने तो वेदांत का भाष्य लिखा किंतु उसको भी सरल साध बोधगम्य भाषा में कर करके सब लोगों के लिए उसको सुलभ किया जाए, गुरु महाराज जी की भी बड़ी इच्छा थी। विशेषकर तो उनकी इच्छा थी जो वेदांत का अप्रतिम भाष्य भागवत है, इसलिए वेदांत के सूत्रों से भागवत का मेल खाता है। इसलिए वेदांत सूत्र की व्याख्या करते समय श्रीमद् भागवत के अनुकूल जो श्लोक हैं उसको लेकर के वहां पर रखा है। इस महापुरुष गुरु महाराज जी तो नहीं कर सके, चले गए ताजी में, तो इन महापुरुष ने बड़े परिश्रम के साथ में श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक जो उस वेदांत के सूत्र से मेल खाता है उसको उसमें देकर के उसकी व्याख्या की का देकर के अनुपम ग्रंथ राजी वेदांत का उन्होंने भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने भक्ति गोस्वामी सिंधु बिंदु उज्ज्वलिन मणि किरण
भगवतामृत
और भगवतामृत खना जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का यह ग्रंथ है, इन ग्रंथों के माध्यम से ही हम लोग रूप गोस्वामी के और सनातन गोस्वामी के कृष्णदास कविदास के ग्रंथों में हम लोग प्रवेश पा सकते हैं। ये द्वार सुन इन्होंने सब सहज उसकी व्याख्या करके टीका करके इस ग्रंथ को इन्होंने प्रकाशित किया है। इनके ग्रंथों को पढ़ करके हमको लोभ हुआ कि हिंदी भाषा में इसका भी प्रचार होना चाहिए, इसलिए मैं इन लोगों से हमारे जो सामने खड़े हैं इनसे हमने प्रार्थना की, उनका नाम क्या है, मुनि महाराज जी को, इसके बाद मुनि महाराज जी को हमने प्रार्थना की भाई हमको एक कहीं से ये तीन ग्रंथों को हमको दे दीजिए। उन्होंने कृपा करके उन ग्रंथों को हमने दिया। मैं यहां पर था उसी समय में हमने लिखा अपनी कुछ में और भी कुछ लिखा लेकर के वो हिंदी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया। साथ में राजबक्षण चंद्रिका भी हमने उसमें प्रकाशित करके चार ग्रंथ हमने प्रकाशित किया है। मुझे आज भूल हो गई, मैं आज उनके करकमलों में इन चारों ग्रंथों को देना चाहता था। मैं कल या आज वहां से लौट करके नवीन जी आप लेकर के इन लोगों को दे देंगे, ये पूज्यपाद महाराज जी के करकमलों में इस ग्रंथ को देंगे जो अपने प्रियतम जो राधा गोविंद जी हैं उनकी सभा में और चैतन्य महाप्रभु की सभा में उपस्थित करें और हम लोगों को प्रचुर आशीर्वाद करें जो हम लोग उनके पथ पर चल करके जितना जगत का मालिन्य मनोभाव यही सब दुर्वासनाएं को छोड़ करके सर्व सहज रूप में चैतन्य महाप्रभु की धारा को हम लोग संरक्षण कर सकें और उसमें प्रतिष्ठित होकर के स्वयं भजन भी कर सकें, दूसरों को भी भजन करा सकें। नहीं तो लोग जगत में देख करके हंसते हैं हम लोग, जब प्रदीप के नीचे ही अंधकार हो जाता है तो क्या होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि महापुरुष की हम लोगों पर कृपा करें, हम लोग उनकी धारा में प्रतिष्ठित होकर के गुरु वैष्णव की सेवा कर सकें जैसे उन्होंने सेवा की है, उन्हीं की कृपा से हम लोग उसको पा सकते हैं। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति रूप गोस्वामी धनसी महाराज जी के चरणों में हम लोग प्रथम आए हैं, वे हम लोगों को पूरी पूरी कृपा करें। जय प्रार्थना करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं और इसके बाद में हम लोग सिद्ध बकुल में जाएंगे, आप लोग धीरे 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 धीरे
पावन नित्यानंद प्रभु की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, नीलाचल धाम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय,
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अब तक हम लोगों ने पूज्यपाद सुदेश महाराज जी के मुख से हरिदास ठाकुर के संबंध में नाम तत्वों के संबंध में बहुत कुछ समझते समय भी हो गया है, जल्दी चलना है, नहीं तो 9:30 बज गया है। अभी से यहाँ हम लोग साठ भट्टाचार्य जी, गंगा माता मठ और जगन्नाथ जी में जाना
है।
महाराज जी ने जो कहा बस हम दो एक बातें कहते हैं। यहाँ पर अभी देखते हैं कि ये बकुल पेड़ है। चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन जगन्नाथ मंदिर में गए तो वहां का नियम है, पहले जो आरती सप्तमी में भोर में जो होती है उसमें ठाकुर जी को दातुन इत्यादि दिया जाता है, और वह दातुन जब ठाकुर जी का हो जाता है तो कोई महापुरुष, बड़े आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति या मत के कोई बड़े बड़े लोग होते हैं साधु संत, उनको दिया जाता है विशेष व्यक्ति। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर पहुंचे, आरती दर्शन करके तो पुजारी ने उनको वह दातुन दे दिया। चैतन्य महाप्रभु लेकर के हरिदास ठाकुर जी के यहां पर, हरिदास ठाकुर जी वहां पर नाम भजन कर रहे थे, उन्होंने आकर के उस दातुन को मट्टी में वहां पर गाड़ दिया। गाड़ने के साथ ही साथ में उसमें कपोले आने लगे, पत्ते आने लगे, और देखते देखते विराट महिम रूप का रूप धारण करते हजारों डाले और पत्तों से एकदम भर गया और छाया भी बहुत कुछ। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, हरिदास ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, उसी के नीचे बैठ करके वो हरिनाम करते। कुछ दिनों के बाद में चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए। पहले तो हरिदास ठाकुर जी का निर्ज्ञान हुआ आपके संबंध में, उन्होंने बतलाया, इसके बाद महाप्रभु जी अप्रकट हो गए। कुछ दिनों के बाद में पुजारी नियमित रूप से इसकी पूजा करता था और एक दिन राजा का बहुत से लोग कर्मचारी आए, रथ यात्रा निकलने वाली है और उसका ठाकुर जी का रथ का चक्का बनेगा पहिया, उसके लिए देखा कि ये पेड़ बहुत सीधा, बहुत मोटा और बहुत ऊंचा, बहुत ही सुंदर पेड़ है, राज्य भर में खोज करके ऐसा सुंदर वृक्ष नहीं मिला। देख करके उन लोगों ने कहा इसको हम लोग काटेंगे, और काट करके ठाकुर जी के रथ यात्रा के लिए पहिए बने, उसमें एक ही साथ में बहुत पहिया हो जाता। वहां के उस समय जो पुजारी थे उसे बहुत प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके, यह सिद्ध बकुल है, हरिदास ठाकुर की स्मृति है, महाप्रभु जी की स्मृति है, तुम छेड़छाड़ मत करो, इस वृक्ष को रहने दो, दूसरा वृक्ष तुम लो, इसके बदले तुमको हम रुपया देते हैं, तुम कहीं से भी दे करके खोज करके और वैसा बनाओ। किंतु वो माना नहीं, तब वो भूख हड़ताल किया, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे किंतु तो भी नहीं सुना, ताकि कल हम वृक्ष आकर के सदैव ही चाहते। जब किसी प्रकार से नहीं माना चला गया और पादिया जी से फिर सदैव वो आया और ये बिना खाए पिए और वहीं पर हरि नाम करते। सवेरा जब आए वो लोग साथ वो काटने के लिए और कुल्हाड़ी और सब लेकर, जब आया तो देखा क्या, पेड़ में नीचे कुछ सार है नहीं और वो जमीन पर लुढ़क गया है, लोट पोट गया है, और वो जो ऊंचा तक उसका मोटा लंबा जो था वो कुछ है ही, केवल ऊपर का छाल है जैसा अभी देख रहे हैं, इसी रूप में 500 वर्ष पहले की बात, और ऐसा ही वो गिरा पुरा, उसमें क्या अब कुछ हो नहीं सकता है बढ़िया और सकता। देख करके कब कैसे हो गया, देख करके उनको आश्चर्य वो हो गए, और फिर उस पेड़ की परिक्रमा करके और शिक्षकों के रूप में इसकी प्रतिष्ठा हुई और तब से सब समय हरा भरा रहता है एखनो हरा भरा एक हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु एक खाने से एक वृक्ष छाया से हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम प्रतिदिन करते अपतित भावे किछु नाम उच्चारण करते हैं और किछु नाम मने मने करते শিলরূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী নিজেকে উনি বললেন ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম নিয়ে নিজেকে তৃণাগত শুনুন যেমন মনে করতেন আর এরাও যেরকম হরিদাস ঠাকুর যেতেন না ওখানেতে মন্দিরেতে বিগ্রহ দর্শন করতে এরাও যেতেন ওই নেই যেতে থে আর ওই পর আকরকে ভজন করতে থে আর মহাপ্রভু উনকো দর্শন দেনে কে লিয়ে ইহাঁ পর প্রতিদিন আতে থে उनकी प्रसाद की व्यवस्था करते थे। एक दिन रथ यात्रा के समय में एक प्रसिद्ध घटना हुई। चैतन्य महाप्रभु जी राधा गांव में विभावित होकर के जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। शहीद तो प्राणनाथ अमी शहीद प्राणनाथ के थे कि जातजन्म जिनके लिए नारा हृदय जर्जरित हो गया दिवस समय जर्जरित हो गया। आज उसी प्राणनाथ को हमने पाया कुरुक्षेत्र की बात उनको सुनाई जब गोपियां उनसे मिलने के लिए उस समय में महाप्रभु जी भाव विभोर होकर के और बार बार स्वरूप दामोदर के द्वारा सेत प्राणनाथ पाई ये धुआ गान कराने लगे और उस समय में एक श्लोक पढ़ रहे हैं लाखों लोगों की जय जय ध्वनि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की ध्वनि और हरि बोल की ध्वनि और कितने बादल
14
प्रधान रूप में तो 14 और ना जाने कितने होंगे सिंगा और क्या क्या सब बज रहा आकाश हरि बोल ध्वनि से गूंज रही और उसमें महाप्रभु जी वो श्लोक बड़े प्रेम के साथ में पठ करके और श्लोक श्लोक क्या
जो को मान
महाराज जी वहां पर जाकर के इसकी व्याख्या विशद रूप में करेंगे हमको तो अनुशीलन नहीं है महाराज जी इस विषय में पटु हैं भूमिका बांध करके इसकी व्याख्या करेंगे
ये प्रॉपर्टी है
तो महाराज जी के मुख से ही हम लोग इसको सुनेंगे मैं अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता इसलिए संक्षेप नहीं कर सकता महाप्रभु जी ये काव्य प्रकाश का साहित्य दर्पण का यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ अलंकारिक ग्रंथ उसमें से ये श्लोक पाठ कर मेरा मन रेवा नदी के तट पर जाने के लिए अपने प्रियतम से मिलने के लिए हमारी लालसा जग रही वो प्रियतम तो यही है और मैं भी वही हूं हम दोनों की अब शादी हो गई है किंतु यहां पर माता पिता भाई बंधु ये सब लोग हैं और बड़ा राज्य है यहां पर हमारा मन नहीं लगता है इनसे मिलने में मिलन तो वही है रात वही चैत महीने की रात है बसंत ऋतु की रात कदम्ब से वही हवा होकर के आ रही है किंतु हमारा मन हम लोगों का पूर्व मिलन जबकि शादी नहीं हुई थी प्रथम मिलन था और उस मिलन में जो हम लोग स्वच्छंद गति से वहां पर मिले रेवा नदी और बेंत का बेंत बन पास ही में कदम्ब के वृक्ष है नदी के सुगंधित खूब सुशीतल जल और कदम्ब का वहां करके और चैत्र मास की वह सुंदर अनिल मदद सावती उसी में हम लोगों का जो प्रथम मिलन हुआ है वैसे ही मिलन के लिए हमारा चित्त कोई नहीं समझ रहा एक व्यक्ति है जो समझता है वह स्वरूप का एक छोटा सा लड़का भी वहां पर खड़ा है लड़का मैंने महाप्रभु का संत प्रिय रूप उनको बाजे गाजे और हरि ध्वनि और जगन्नाथ जी के तरफ में उनकी दृष्टि नहीं उनकी दृष्टि कहां है
महाप्रभु
जी के मुखारविंद में कैसे कैसे भाव तरंग आ रहे हैं जैसे समुद्र में लहरी आती है ऐसे उनके मुखारविंद में जो जो भावना करते हैं, भावना दृष्टि से देख करके मिलन में जो जो भावनाएं होती हैं राधा जी के साथ में कृष्ण के मिलन में, वो सब देख करके ये अत्यंत आकर्षित, बस वहीं पर उनके भ्रमर की तरफ में कमल पर जहां पर रहता है, ऐसे मुखारविंद पर इनकी दृष्टि टिकी हुई है और वही भावों को पढ़ रहे हैं और दूसरा कोई नहीं सुना, बस वही एक सुने सौत दामोदर जी सुन करके भी कुछ बोले। रथ यात्रा के समाप्ति काल के पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने के लिए यहां पर पधारे। रूप गोस्वामी समुद्र में स्नान करने गए थे, महाप्रभु जी बातचीत करते हुए ऐसे ऊपर में हाथ ऐसे पकड़ करके खड़े थे जैसे कि हम लोग खड़े हो जाते हैं, इतने में कोई हाथ उनके चीज में लगी, ऐसे कौतूहल से निकाल लिया, दिखा जिस पर कुछ लिखा है, लिखा है कैसे,